अभी तक हम सूरत बकरा, सूरत आले इमरान और सूरत निसा और मायदा, ये चार मुसलसल मदनी सूरत है, इसीलिए इन्होंने इतना टाइम भी लिया। दुआ करें आप और बात समझ आ जाए। लेकिन अब इसके बाद सूरत अलनाम मक्की सूरत आ रही है। बिल्कुल आप इसको तरतीब से देखें तो कैसे लगेगा कि जैसे खाने के बाद डिसर्ट लाइट सा लेते हैं ना, अभी हम वो कहते हैं ना कि फुल मील ले चुके हैं। अब अगर हम चले मिसाल में एक बार भी मौका मिल रहा है तो अगर उससे ऐसे ही गुजर जाए तो बात नहीं बनती। तो इंशाल्लाह सूरत अल अनाम को जब आप सुनेंगे तो आप इनकी आयतों को दिल पे महसूस करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग पे बोझ देने वाली बातें नहीं होंगी। सूरत अल अनाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल अनाम आखिरी दौर की सूरत है मक्की सूरतों में से। इसमें मौजजात का मुतालबा भी है, हुज्जत बाजियां भी हैं और इनके इसरार भी हैं कि आखिर हम पर कोई ऐसी किताब क्यों नहीं उतरती कि जिस तरह की किताब हम चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में मक्का वालों के मुतालबों पर मौजजा ना उतार कर उन पर रहम किया। फिर आपको इस सूरत में आपको माजी, हाल और मुस्तकबिल की कुछ चीजें दिखेंगी। माजी के किस्से हम पढ़ेंगे ताकि उससे सबक लें, हाल के इसलिए पढ़ेंगे कि आज को इस्तेमाल करके इससे बेहतरीन फायदा लें, और मुस्तकबिल के किस्से इसलिए कि उसकी तैयारी करें। और हकीकत है कि कल का माजी आज का हाल है, और इसी तरह आने वाला मुस्तकबिल उससे बाद वाले दौर का माजी है। जमाने के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हमें इन सूरतों में दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहता तो फिर उस कौम के साथ क्या होता है, बहुत कुछ है। अजाब किन बस्तियों पे आता है, क्या है, बस आप कह लीजिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाली आयतें हैं। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ करेंगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक नबी अजाब भी कबला तक तुल नबी गजबी का वाफिना कबला सालिक, कि अल्लाह अगर तू किसी जगह अजाब का फैसला करे तो हमें उसमें ना मारना, तो किसी को कत्ल करना चाहे तो हमें उसमें ना करना, और जहां तेरी पकड़ आने लगे तो उससे पहले हमें वहां से निकाल देना। बहुत सिंपल सूरत है लेकिन दिल पे लेने वाली सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकस समावाति वल अर्द। क्या पता चला, सूरत फातिहा के बाद एक और सूरत अलहम्द से शुरू हो रही है। आगे भी और सूरतें आएंगी, वहां आप देखेंगे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। रोशनी क्या है? तौहीद की रोशनी। और तारीकियां क्या हैं? कुफर के अंधेरे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस इस्लाम की तौफीक दे। शिर्क की नफी और नेमतों पर तवज्जो इस सूरत में आपको मुझे बहुत दिखेगा। जिस तरह अल्लाह ने रोशनी और तारीकियां बनाई है ना, इसी तरह हमारे इस वजूद के भी दो हिस्से हैं। एक बाहर का जो हमें मादी सूरत पे दिखता है, ये अंधेरा है। इंसान अपनी असल से मट्टी से बना है ना, हम अंधेरे में हैं, लेकिन जो अंदर हमारी रूह है ना वो रोशन है। जब अंदर की रूह चार्ज हो जाती है तो पूरा वजूद नूरानी बन जाता है। अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्लाम और कुरान का नूर भर दे। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावते हक को मानने से इनकार कर दिया, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। है ना, ना समझी की बात। वही है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मोहलत मुकर्रर की, और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो इसके हाँ तय शुदा है, मगर तुम लोगों के शक में पड़े हुए हो। शक अमल का दुश्मन है। हम तब तक अमल नहीं करते जब तक हम मशकूक रहते हैं किसी चीज के मामले में। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी है, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है। इमेजिन करें कोई ऐसी बात जिसके बारे में मैं कहती हूँ किसी को ना बताना, अल्लाह को उसका भी पता है और खुली बातें भी उसको पता है। और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो इससे भी खूब वाकिफ है। लोगों का हाल ये है कि इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो इनके सामने आई हो और उन्होंने इससे मुंह ना मोड़ लिया हो। चुनाचे अब जो हक इनके पास आया तो इसे भी उन्होंने झुठला दिया। हम अपने लिए सोचे, हमारे सामने भी तो निशानियां आयतें आई हुई है ना, तो अपने दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन आयतों को झुठलाने वाला नहीं बल्कि मानने वाला बना दे। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे, अन करीब इसके मुतल्लिक कुछ खबरें इनको पहुंचेंगी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ही ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा है। कभी मोहनजोदड़ो देखा, हड़प्पा गए, सिंध के देखे रॉइंस, वो भी तो अपने दौर की कौमें थी ना। आज वो किधर हैं? तो आज वो नहीं, तो आज जब अल्लाह के अजाब आते हैं तो किधर लोग जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अल्लाह ने इनको क्यों पकड़ा? फरमाया, इनको हमने जमीन में इक्तदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा, इन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई, इनके नीचे नहरें बरसा दी, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. کیا اللہ ان کی ترقی سے ناراض تھا؟ کیا اللہ کو لوگوں کا دنیا میں ترقی کرنا برا لگتا ہے؟ تو جھوٹ ہے. بلکہ کیا کہا؟ فَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ پکڑتے ہیں. جب اللہ کسی قوم کو طاقت دے, غلبہ دے, دولت دے, پھر جب قوم عیاش ہو جائے, وہاں خرابیاں پیدا ہونے لگے, شرک ہونے لگے, اس طرح کی باتیں, تو پھر وہاں خرابی ہوتی. آج بھی آپ دیکھیے, جہاں سے کھنڈرات آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو بت دکھیں گے. سندھ کی کھنڈرات میں سے بل نکلا, ڈانسنگ ڈال نکلی. اور آج بھی افسوس کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والے بھی جب اپنے بچوں کے سکولوں کے ٹرپس کو وہاں بھیجتے ہیں تو کوئی عبرت نہیں لیتا. کبھی نہیں کوئی سوچتا کہ یہ وہ بستیاں جہاں عذاب آیا تھا. ہم خود اپنے اوپر لے کے سوچتے ہیں کہ اسکول کے ساتھ کبھی گئے تھے, کچھ نہیں پتا تھا کہ بس وہاں فن, میلہ, ہنس بول کے اسٹاک نے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ کھا پی کے واپس آ گئے. اگر ٹیچرس اللہ سے جڑے ہوں گے نا تو وہ آپ کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ بھی اللہ کی محبت دیں گے. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی ایسا ہے. آپ نے سنا ہوگا پومپیائی کے بارے میں, اٹلی کا شہر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی کتنی نعمتیں تھی, لیکن وہاں پہاڑ پھٹا, ماؤنٹ وسکوس تھا وہ پھٹا, لاوا پھٹا, اتنی کرپشن آ چکی تھی, وہ بالکل ایک ایسے ٹورسٹ سٹی بن چکا تھا کہ عین زنا کرتے ہوئے لوگ لاوے کے اندر پریزرو ہو گئے. کئی سال کے بعد جب کھنڈرات کھلے تو وہ اسی گناہ کی حالت میں موجود تھے. تو یہ اللہ کو برا لگتا ہے. اور ایسی جو مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے قانون توڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانونوں میں سے کسی کو بدل کے اسی کو لوگوں کی تباہی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد مطالبوں کی باتیں, اور سورۃ الانعام چونکہ مکہ کے اس دور میں تھی جب اللہ کے نبی سے یہ بہت مطالبے کرتے تھے, تو فرمایا پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے یہ تو کھلا جادو ہے, کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا, اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی, اور اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے, اور اسی طرح اسی شبے میں ان کو مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب موجود ہے. دیکھیے جو لوگ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے نا وہ میریکلز مانگتے ہیں, معجزہ دکھائیے, کوئی معجزہ ہوگا تو مانیں گے. تو کوئی نبی کا کام کوئی مداری تو نہیں ہوتا, وہ کوئی آپ کو تماشا تو نہیں دکھانے آیا. سنجیدہ لوگ کتاب پڑھ کر عمل کی باتیں پک کرتے ہیں, اور جن کے مائنڈ ذرا بھی فنی سے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا جی کوئی اس میں ہونا چاہیے, کوئی ورائٹی پروگرام ہو, کوئی ذرا تھوڑا ہنسی بولنا, پان چھا لیا, ذرا اسمائلنگ. یہ کہ منہ بند کر کے دو تین گھنٹے بیٹھے رہیں یہ تو بہت مشکل ہے. تو اس دور میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی اتنی سنجیدہ کتاب جو آج ہم کمزوری مانوں کے ساتھ پڑھیں تو ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہے, جب اللہ کا نبی ان کے سامنے پڑھتا ہوگا جس کے اوپر یہ کتاب اتری تو اس کتاب کی کیا تاثیر ہوتی ہوگی. لیکن ان کے آگے سے شوشے دیکھیے. تو اگر آج آپ کسی کو قرآن سنائیں وہ آگے سے کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ڈونٹ مائنڈ اٹ, کیونکہ سنجیدگی کے ساتھ یہ کتاب سمجھ آتی ہے. لیکن لوگ دین کو بھی جب کھیل تماشا بنا لیں تو دین کی محفلوں میں بھی بہت کچھ ایسا دکھے گا کہ جس سے اور تو سب کچھ ہو جائے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی. فرمایا نبی تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. ہم اپنے دل سے پوچھیں, ایک ہی آواز آئے گی سب بولنا, اللہ کا. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اچھا جس کا سب کچھ ہو پھر وہ تو بہت ظالم اور بہت خوفناک قسم کا ہوگا. جس کو کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بہن, دنیا میں جس کی جتنی بڑی حکومت ہے لوگ اتنا ہی اس سے کانپتے ہیں. کہا نہیں ہے سب کچھ میرا, لیکن ہائی لائٹ کیجئے گا, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا, اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا. بات سمجھ آئی؟ آج ہم گناہوں کی وجہ سے کیوں نہیں پکڑے جاتے, وہ بڑی ذات رحیم ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی رہے گا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے. مگر جن لوگوں نے آپ اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اس کو نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا. اللہ کی اس اونرشپ کو فیل کریں, तो फिर मरूब होंगे। हम जिसकी चीजों को देखते हैं ना उससे मरूब होते हैं। जब हम फितरत में रहेंगे, नेचर में रहेंगे, खुले आसमान के नीचे हैं, बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, हम कहेंगे सुभान अल्लाह। और आप आर्टिफिशियल दुनिया में रहे, आप कहेंगे वो शंगलियर किसने बनाया, वो रूफ इज सो नाइस, सो कंफर्टेबल कितना है, दिस एंड दैट। तो आर्टिफिशियल दुनिया में रहने वाले लोग मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी वो ओपन में लेके जाया करें, खुद भी रहे तो आप दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई को महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फरमाया अल्लाह का सब कुछ है और वो सब कुछ सुनता और जानता है, को अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं। इस जात को जिस छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है, जो रोजी भी देता है रोजी लेता नहीं। मक्का वाले अपने बुतों के आगे खाने रखते थे, प्रसाद खिलाते थे, अल्लाह कहता है मुझे तो तुम नहीं खिलाते, तुम्हें खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि सबसे पहले मैं इसके आगे सरे तस्लीम खम करूं, और ताकीद की गई है कि कोई शिर करता है तो करे, तू बहरहाल मुशरिकों में से ना होना। कहो अगर, ये भी आयत हाईलाइट कीजिए, कभी कोई प्यारा प्यारी, कोई आपकी दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको किसी गुनाह पे मजबूर करें, दे विल फोर्स टू डू दिस, लुक एट दिस, कर लो, तो ये आयत याद कर लें। कम अज कम इसका तर्जुमा बता दीजिए, कुल इन्नी अखाफ इना सईद रब्बी अज़ाब यौम नज़ीम। कहो मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, सजा का डर गुनाह से लज्जत छीन लेता है। उस दिन जो सजा से बच गए इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया, और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो कोई इसके सिवा नहीं जो तुम्हें इससे बचाए। हम जब किसी की बात को रद्द करते हैं ना, तो फिर लोग हमें खौफजदा करते हैं, कहते हैं देखो ये इतनी अल्लाह वाली ना बनो, ये बेटियों के रिश्ते कैसे होंगे, और दूसरों को नजराज कर रही हो, मुश्किल में काम कौन आएगा, और मियाँ नाराज हो गया तो पता नहीं दूसरी बीवी ना ले आए। तो आपको यह आयत याद आ गई, यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु, जब मेरा रब मुझे कोई नुकसान देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो खैर देना चाहे तो वो कादिर है, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियार रखता है और दानाओं बाखबर है। इसको अपना क्रीड बनाए, ये मुस्लिम क्रीड है, और यही चीज आपको दूसरों से बेनियाज करेगी।